आज वहाँ पर कुछ बतलाया और पहले भी बहुत बार बतलाया है, शास्त्रों में गुरु तत्व की बड़ी महिमा बताई गई है, जिसमें कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कहा, जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो जस्य प्रसादान नगति कृतोपि, जिनकी कृपा ही भगवान की कृपा है और यदि उनकी कृपा नहीं है तो किसी भी की कृपा नहीं है, भगवान इत्यादि किसी की भी कृपा नहीं है। और भागवत श्रीमद् भागवत में बतलाया गया है कि भगवान को मेरा स्वरूप समझो, आचार्यं मा विजानिया न अवमन्नेत करहिचित, कभी मेरी गुरु जी की कभी अवज्ञा मत करो। सर्वदेवमयो गुरु, गुरु सर्वदेवमय हैं। सर्वदेवमय मैंने तीनों जितने भी देवता हैं, देवलोक, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीन हैं। ये गुरु ब्रह्मा हरि, ब्रह्मा विष्णु और महेशमय हैं। हमने एक दिन बतलाया था, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश हैं एवं परब्रह्म है, ये भी बतलाया था उस मंत्र में है।
गुरु साक्षात परब्रह्म।
कल हम लोग सनातन गोस्वामी जी की टीका में देखा, परम ब्रह्म मूर्ति है, इसलिए किंतु सब समय ये ध्यान रखना चाहिए, विषय नहीं, आश्रय गुरु है, सेवक भगवान है। दूसरी बात, ब्रह्मा इसलिए कहा, ब्रह्म का कार्य है सृष्टि करना, ऐसे गुरु जी हमारे हृदय में भक्ति को रोक करके उसको सृष्टि बनाते हैं, इसलिए ब्रह्मा। विष्णु माने पालन करते हैं, भक्ति को गुरुदेव पुष्ट करते हैं, जब तक कि प्रेम न हो जाए तब तक पुष्ट करते रहते हैं, कितना परिश्रम करते हैं एक शिष्य के लिए ये हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं बद्र जी। और अंत में जीवों के अनर्थों को शंकर की भांति सब को दूर कर देते हैं, अनर्थ अपराध दुर्दैव, और उसको प्रेम में उपस्थित करते हैं, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मय हैं। गुरु जी के लिए यथार्थ गुरु मैंने बतलाया, जीव जो इस समय बद्ध है उनके लिए भगवान की भक्ति के बिना, कृष्ण प्रेम के बिना कभी भी उसकी गति नहीं है, उसकी विमुखता भक्ति के द्वारा ही दूर होगी और तभी वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होगा, वो उसका जीवन आनंदमय होगा। किंतु ये भक्ति मिलेगी कहाँ से, जो उस जगत का आदमी हो और इस जगत का आदमी हो। एक चीज चीन में मिलती है, किंतु चीन और भारतवर्ष में विवाद है, और वहाँ का चीज खूब सस्ता मिलता है। अब वो चीज कैसे आई, यदि नेपाल में जाओ, नेपाल के आदमी चीन में भी जाते हैं, इंडिया में भी आते हैं, तो वहाँ से कोई संपर्क किया जाए तो चीन की वस्तुएं हमको मिल जाएगी। ऐसे ही भक्ति स्वयं गोलोक वृंदावन में रहती है, वो संबित और ह्लादिनी की वस्तु है, और वो भगवान के नित्य सिद्ध परिकर नंद बाबा जसोदा, ललिता विशाखा, बलदेव जी, मधुमंगल जी, श्रीदाम जी, रक्तक पितरक इत्यादि लोगों में वो भक्ति रहती है। अब वहां पर आती है तो यहाँ के लोगों को कैसे मिले, जो वहां पर भी रहते हों और यहाँ पर भी रहते हों और वहां की चीज आमदनी यहाँ कर सकते हैं, उस व्यक्ति का नाम, जो उन लोगों के अत्यंत प्रिय हैं, स्वरूपतः उनके ही हैं और इस जगत में कृष्ण की इच्छा से, राधा जी की इच्छा से आते हैं, या तो भगवान अपने आप को जाते हैं अथवा अपनी शक्ति को भेजते हैं, गुरुदेव जी उनकी करुणा शक्ति है। संसार दावा नलली हलोक प्राणाय कारुण्य घना घनत्व, तो उनकी मूर्ति है कृपा की, भगवान की कृपा की मूर्ति इस जगत में उतरती है तब उसको है। तो वो शक्ति है, शक्ति किंतु पुरुष के रूप में यहाँ पर आती है, कभी शक्ति के रूप में भी आती है, जैसे जन्नवामा और सची देवी, हेमलता ठाकुरानी और मालिनी देवी,
सीता ठाकुरानी,
हाँ, और गंगा माता, ये सब जो हैं, ये लोग भी गुरु के रूप में आए हैं। तो ये सब लोग शक्ति हैं, किंतु कभी पुरुष के रूप में और कभी किसी के रूप में, आचार्य के रूप में ये लोग आते हैं। और एक चीज समझो, कभी हिमालय का, कैलाश का पानी वहाँ पर, जहाँ पर महासागर है वहाँ पर जाएगा कि नहीं, कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, चलता है, चेतन है, जाएगा कैसे, कोई लाएगा तो जाएगा ना। देखो पानी ये थे ना भगीरथ जी, वहाँ पानी था गंगा, और उसको कैसे ले आए, और वो धारा आज तक चलती आ रही है। ऐसे गुरु परंपरा की धारा कृष्ण से चली और आज तक परंपरा की धारा से वो जो प्रेम है ये जगत में प्रवाहित होता रहता है, गुरु उस प्रेम को लेकर के कहीं जगत के जीवों को, ये गुरु जी का प्रधान कार्य है। यदि कोई ऐसा न दे सके तो वो गुरु गुरु नहीं है, यही देना ही उनका गुरुत्व है। दूसरी बात इसके संबंध में भी आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, तब यही समझिए गुरु उन्हीं को कहते हैं। और ऐसे ही गुरु के लिए कहा गया, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। और एक और है ऐसा ही नहीं, गुरु प्रपद्येत, और एक ऐसे ही गुरु का वो दिया गया है, तद्विज्ञानार्थम स गुरु एव अभिगच्छेत् समित प्राणी सोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। ये दोनों गुरु का दोनों में लक्षण दिया गया, समस्त शास्त्र में पारंगत हो, और पारंगत होने पर भी गुरु नहीं है यदि ब्रह्म की अनुभूति नहीं है, पर ब्रह्म अर्थात भगवान की अनुभूति नहीं है तो वो सब जानना भी बेकार ने? और यदि शास्त्र का ऐसा कोई श्लोक याद नहीं है, जैसे कि हमारे गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज थे, किंतु परब्रह्म की अपरोक्षानुभूति है इसलिए गुरु है। समस्त शास्त्रों में प्रवीण भी हो और भगवान की वैसी भक्ति नहीं है तो गुरु नहीं। अब हम लोगों के परंपरा में प्रभुपाद जी ने, हम लोग भागवत परंपरा कहा ना, भागवत परंपरा क्या चीज है, रियलाइज जो सोल है, अनुभव संपन्न जो है, उसको उन्होंने प्रभुपाद ने उसमें दिया और बाकी को काट छांट कर दिया। ना, इसलिए सहजिया लोग बिगड़ जाते हैं, हमारे गुरुओं का नाम नहीं इसमें लिया। और उसमें जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बाद में भक्ति विनोद ठाकुर जी को ले लिया, और फिर गौर किशोर दास लोग ले, और बाकी सब छूट गए। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हम लोगों के थे, उन्होंने ग्रहण नहीं किया, इसीलिए वो लोग बिगड़ करके गौड़ीय वैष्णव को नहीं मानते हैं। धारा को मैं कहा जाए तुम लोग अपने मानते हो मानो, किंतु भागवत परंपरा लेना पड़ेगा, सिद्ध जो महापुरुष है उनको लेना पड़ेगा, उनसे ये प्रेम मिलेगा। और नहीं तो थोड़ा सा डायरेक्शन मिल सकता है मध्यम अधिकारी, किंतु प्रेम जो देने वाला है तो कौन देगा, जिसके पास में प्रेम है सिद्धि वही तो देगा ना, देगा कौन। इसलिए कुछ जो गुरु का अनुसरण करने वाले जैसे नारद इत्यादि, ये सब दृष्टि देने से ही बस हम लोग को सिद्धि हो जाएगी। और उसके अनुगामी लोग जो हैं वो शास्त्रों के विचार से कुछ दिन अपना संग दे करके हमको भक्ति में प्रतिष्ठित करा देंगे, और इसके बाद वाले जो हैं क्या करेंगे, चलिए हमारे गुरु जी के पास में, हमारे आचार्यों के पास में चलिए, इस प्रकार से वत पदर्शक गुरु होंगे। और इसके बाद में जो आचार विचार में है ही नहीं है प्रतिष्ठित, न सिद्धांत का कोई ज्ञान है और न कुछ, और सब कुछ शिष्य करने लग गए, भाई उसे शिष्य से गुरु से कुछ भी लाभ नहीं होगा। ते उभौ दोनों शिष्य और गुरु नरक तो नहीं जाएंगे, किंतु प्रेम नहीं मिलेगा, धन पुत्र लक्ष्मी ये सब मिल जाएगा। इसलिए ऐसे शुद्ध गुरु भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। ये सब तो तत्व तो हम लोगों ने बहुत से विचार किए हैं। अब थोड़ा सा बाण महाराज जी के चरित्र पर मैं चलता हूं। महाराज जी का जन्म हुआ था आजकल ईस्ट बंगाल का, ईस्ट बंगाल माने बांग्लादेश, उसमें खुलना जसोर में, जसोर जो है भारत अभी मिला हुआ है, जसोर कहते हैं वो बनगांव, बनगांव के बाद ही में वो, और इधर में भारत वहीं पर पास ही है, भारतवर्ष माने भारतवर्ष में तो था ही उस समय, इनका जब जन्म हुआ था उसमें भारतवर्ष था वो। इनका जन्म आज से 73-74 वर्ष पहले हुआ, हमसे ये 2-3 वर्ष बड़े हैं, हमारा ही करीब करीब 70 हो गया, यदि 71 या 70 तो उनका 2-3 वर्ष हमसे बड़े हैं, तो 73 के करीब में या 72 से ऊपर होगा, 73 के करीब या 74। और त्रिविक्रम महाराज का उनसे भी 5 वर्ष और बड़ा, सर थोड़े थोड़े के अंतर से, तो वो आज 74-75 वर्ष हो गया ना। उस समय में बंगला और भारतवर्ष का ये विभाग नहीं था। उनकी माता जी प्रभुपाद जी की शिष्या थी, हमने उनको देखा है बहुत दिन, तुम लोग भी देखा है बहुत दिन, इनके पिताजी हमारे गुरुजी के शिष्य थे, देखो उनकी मैया जो थी प्रभुपाद जी के शिष्य, उनका मैया का नाम याद है, ये याद करके कहीं से लिख लेना,
बाबा नाम माने मायन नाम,
और पिताजी का
सतीश चंद्र दास अधिकारी,
सतीश चंद्र, किंतु उनका ये ठीक, अच्छा उनके पिताजी दो भाई थे, एक का नाम था नरसिंह, नरसिंह उनका नाम था,
प्रथम थे नरसिंह नाम छिले,
कुछ दूसरा नाम था प्रभुपाद जी ने उनका नाम नरसिंह, नरसिंह ब्रह्मचारी, और उनका और उनके ये छोटे भाई थे बावन महाराज जी, नहीं बावन महाराज जी बड़े, बड़े भाई के लड़के थे बावन महाराज जी, और छोटे भाई थे नरसिंह, किंतु घर के मालिक थे नरसिंह, पढ़े लिखे थे, अमीन थे, उनका बड़ा रोब राब था, और देश में उनका बड़ा नाम था, बड़े सत्यवादी ईमानदार, एक पैसा भी घूस नहीं लेते थे। नरसिंह महाराज जी कह रहे थे एक समय में हमने देखा जे ढोल मृदंग बज रहा और कुछ लोग गा रहे हैं, গানা কোন সা সংসারে পড়িয়া না না আরে শরণাগতি কা সুর নেই আজ খোল বাজা রা মৃদঙ্গ উসমে কই তাল নেই রঙ্গনাথ জি কে ভাই থে শায়দ বাজা রে থে রঙ্গনাথ কা জানতা হ্যাঁ বাজাতা হ্যাঁ উসকো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কাজ সব তাল উসকে এসমে যে বাজাতা উসিমে উসমে হ্যাঁ সব কহাঁ গয়া হ্যাঁ আচ্ছে ত্রিবিক্রম মহারাজ জি কা ঢোলক ঢোলকিয়া হ্যাঁ ত্রিবিক্রম মহারাজ জি কা খোল বাজা কে তো বো কই কুছ তাল মাম হামারে গৌড়ীয় বৈষ্ণব মে কই নাই জানতা তো অব থোড়া সা সুর সিখনে লাগে পদ মে উনমে লাগিতে হ্যাঁ और भाव करे थे जैसे हमने सुना है एमन दुर्मति संसारे पड़िया और बालकपन से लेकर के और बूढ़े अवस्थे तक का सब चरित्र उसमें भर दिया गया। जब पेट में था बड़ा दुख तो उसमें भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया यही कीर्तन हमने सुना ये कीर्तन जैसे माता के पेट में उल्टा सीध नीचे और पैर ऊपर बंधा हुआ और घोर नरक पैखाना टट्टी और पेशाब में गड़ा हुआ और छटपट करता है उस समय में कभी किसी को भगवान ने दर्शन दे दिया कहे प्रभु अब हम मैं भजन करूंगा जरा निकाल दो और इसके बाद में भगवान ने निकाल दिया फिर वही माँ के गोदी में और बहन की गोदी में बढ़कर के मुस्कुरा रहा है कभी रो रहा है कभी आऊं कर रहा है फिर वो भूल गया भजन करना और फिर पढ़ने में लग गया फिर पढ़ने के बाद में मैया ने कहा कि बेटा मेरी तबीयत अब खराब है तू शादी कर ले जल्दी से बहू आ जाए तो मैं ठीक हो जाऊं बस विवाह करा दिया बच्चे हो गए इसके बाद में नौकरी चाकरी व्यवसाय में लग गया बूढ़ा हो गया तो भी संसार नहीं छोड़ता और अंत में सब इंद्रिय दुर्बल खीन कलेवर भोगा भावे दुखित अंतर दुख खाने की चीजें खा नहीं सकते राबड़ी पड़ी है किंतु डायबिटीज है बतलाओ क्या करेंगे नहीं खा सकते रसगुल्ला है नहीं खा सकते कोई चीज है वो पेट खराब है नहीं खा सकते भोगा भावे दुखित अंतर ये कीर्तन सुन करके हमने कहा जी अब हम नहीं रहेंगे हम जाएंगे अब कहाँ से भाई आए हो तो मायापुर से तो किनके शिष्य हो तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी मैं अब जब तक जहाँ जहाँ कीर्तन और पाठ होता रहा मैं वहीं पर जाता था और अंत में मैंने नौकरी छोड़ दी और सब छोड़ छाड़ करके अपने भाई को सब कुछ दे करके और मैं चला भाई मैंने यही उनके छोटे भाई उनको दे दिया सतीश चंद्र दशाधिकारी उनको सब दे करके चले किंतु चले आए तो ये सतीश चंद्र जी के अधिकारी की जो पत्नी थी बड़ी सती साध्वी धार्मिक प्रवृत्ति की थी वो सीधे प्रभुपाद जी के पास में आकर के उनसे दीक्षा लिया और वैसे बड़े ठाट से रहती थी पति को भी दुरुस्त करने वाली थी पति मांस और खाते का जी घर में ढुकने नहीं देंगे तुमको यदि खाएगा तो उनको निकाल देती थी बड़ी रोकदार थी बच्चों को भी ऐसे शासन करती थी बावन महाराज जी चार भाई जिसमें बड़े ये थे और निताई निमाई एक और था
सुबल
वो गुरु महाराज जी का शिष्य सुबल भी और एक था दुर्भागा
ध्रुव
उसका नाम वो दुर्भागा ही निकला वो गुरु महाराज जी आए तो वो हरिनाम लेने आया तो मैंने कहा जे भाई अपना ये केस कटा करके आओ तब दीक्षा होगी जो केस हम नहीं कटाएंगे मतलब तब तब दीक्षा नहीं है तब हम दीक्षा नहीं लेंगे हम दूसरी जगह लेंगे तो दूसरी जगह चला गया बाबा जी के पास में गया गुरु जी से नहीं लिया और बाकी उसके परिवार के सभी लोग यहाँ पर
गुरु महाराज नाम पहले क्या था
है?
नाम पहले क्या था गुरु महाराज जी के
गुरु महाराज जी का
संतोष
संतोष घर का नाम तो बावन महाराज जी तो बावन महाराज जी करी करी वो अभी सब शिष्य नहीं हुए उनके पिताजी बांग महाराज जी को उनकी मैया ने कहा जैसे तुम हम इस घर में नहीं रखेंगे, हम तो गुरु वहां पर दे आएंगे मठ में, ये हमारा लड़का ऐसा नहीं होगा, हमारे जैसा होगा, तुम लोग का जैसा नहीं होगा। कहा जब तुम जाएगा तो हाँ जाएंगे, अपने काका के पास में जाएगा तो जाएंगे, बस एक काका का नाम करके नृसिंह महाराज जी का और चले आए। उनके काका जी फिर संसार छोड़ करके चले आए। नरसिंह महाराज जी कहते थे, ये बहुत लोग हमको देखने आते थे, नृसिंह ब्रह्मचारी बाबा जी चक्की रकम एक विराट लंबा चौड़ा मोटा एक लोग हो गए, एक बहुत मोटा सा हमको देखने किया। जब हमको आकर के देखा तो कारी आपका नाम क्या है, अतन नृसिंह ब्रह्मचारी नरसिंह ब्रह्मचारी। हमने सोचा था जी आपकी बड़ी बड़ी मोच होगी और बड़े बड़ा लंबा चौड़ा ऊंचा लंबा चौड़ा जवान और बड़े बिगड़ंत आदमी होंगे, आप तो बड़े सीधे साधे ऐसे। इसके बाद में बाम महाराज जी 12 वर्ष की 11 वर्ष की उम्र में उनकी मैया दे गई,
9.5 वर्ष।
पिशीमा और माँ उनार माँ बाम महाराज जी माँ खूब परम धार्मिक छिलो वो थी, इसलिए उनको लेकर के आई और हमारे गुरु जी के चरणों में दे गई। गुरु जी का बड़ा वहां पर प्रताप था मायापुर में, नृसिंह महाराज जी के पास में ले गई तो नृसिंह महाराज जी ने कहा जी इनको दे दो, यही सबके मालिक है, उनको दे दिया। बाबू महाराज जी उस समय छोटे थे, छोटे से, आज एक फोटो बचपन का कोई दिखला रहा था, हमको विश्वास नहीं हुआ। हमने उनको तो देखा है ना, दुबले पतले थे, सिर बड़ा था किंतु दुबले पतले थे। हम जब आए तो हम आए थे 23-24 वर्ष की उम्र में और वो आए होंगे 50 उस समय में 25 वर्ष के होंगे अधिक से अधिक। तो बाम महाराज जी को उनकी मैया दे गई खूब छोटी उम्र में, गुरु जी अपने पास में रखते थे उनको और उनको स्कूल में भर्ती कर दिया। गुरु जी ने वहाँ पर भक्ति बोनेद इंस्टीट्यूशन के वो हेड थे हमारे गुरु जी, तो वहाँ पर उनको भर्ती कर दिया। तो यहाँ पर पढ़ते थे, कहते थे जैसे एक लेमन जूस देंगे तो तुम यदि श्लोक एक सुनाएगा तो बामन मारा 5-7-8-10 श्लोक याद कर लेते तुमको 10 मिल जाता, और कोई 1-2 करता और ये 10-10-15-15 ये श्लोक याद कर लेते। और गुरु जी इनको बहुत बचपन से स्नेह करते थे, क्लास में ये सब समय फर्स्ट सेकंड आते थे, और उस समय में ही जब ये छोटे थे तो इनको आसन करने के लिए और पत्ता और नमक, ये तीन चीज बंगाल में एक साथ में देना पड़ेगा, पत्ता दिया जाएगा परोस और पानी दे चाहे ना दे, किंतु नमक उसमें जरूर देना पड़ेगा क्योंकि चावल और सब चीज ये बनता है शाक इत्यादि, तो इनका काम ही था पत्ता परोसना और वो देना, फिर इसके बाद में पानी चला और जब खा लेंगे लोग तो वो उसको धो देना, ये सब उनका काम था। और ये पढ़ते हुए भी ये सब काम करते थे। थोड़े दिन के बाद में तरकारियां मान्य करना बनाना, बड़ा फर्स्ट क्लास तरकारियां मान्य करते थे, हम लोग थोड़ा सा करते करते वो पूरा कर देंगे, हमको तो ये सब आता ही नहीं था, पीछे मठ में आकर के थोड़ा सा सीखा, हमको इससे कोई मतलब ही नहीं था। और ये बचपन से मठ में रहने की वजह से सब कुछ जानते थे, वैष्णव की सेवा कैसे की जाती है ये सब मठ में सीखा, और इधर में पढ़ते भी थे। पढ़ने वाले जितने थे मैट्रिक पास करने के बाद में हम समझते हैं कि बामन महाराज और 1-2 कोई ऐसा ही होगा जो होगा, नहीं तो बामन महाराज का अतिरिक्त कोई नहीं, सब लोग मठ छोड़ करके चले गए। इसलिए बामन महाराज जी पढ़ाई लिखाई कराने के पक्ष में नहीं किसी को भी। मैं पीछे आया ना, इसलिए मैं सबको लगाता हूँ कि तुम पढ़ो, ये करो, वो करो। वो कहते हैं कि नहीं, पढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई भी पढ़ करके नहीं रहे। हमने देखा गुरु महाराज जी जितने लोगों को पढ़ाया और हमने जितने लोगों को पढ़ाया वो करीब करीब सभी विदाई ले चुके, विशेष करके संस्कृत पढ़ने वाले लोग सभी चले गए। गुरु महाराज जी भी नहीं करते थे, पढ़ाते थे, जो पढ़ करके आया है उसकी तो विद्या लग जाएगी, और यहाँ रह करके जो फिर नए रूप में पढ़ करके कुछ करेंगे वो लोग प्राय ही चले जाते हैं, नास्तिक हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोग हुए जो जिनको पढ़ाया वो व्याकरण इत्यादि ये सब पूरे पढ़ लिए, और ठाकुर जी के मंदिर में थोड़ा सा जाते थे, ठाकुर जी की बंसी और ये सब तोड़वा करके, गला करके और सोना करके अब बेच दिया, लेकर के चले गए घर। एक पंडित जी हमारे थे, गुरु जी के लिए दूध रखा था, आटा हुआ, उसमें ऊपर में मलाई जमी हुई थी, तो उन्होंने सरकंडा या क्या चीज,
पाट काठी
माने एक होता है भीतर में छेद होता है पूरा, बस उसको लगाया, दूध पी लिया और सबका सब एकदम पूरा है। ये कोई का पता नहीं, भाई आप लोग ऐसी पढ़ाई मत पढ़िए। हम कभी कभी पढ़ा देते हैं, दया आती है, किंतु अब हमने कहा जो अब बहुत से लड़कों को पढ़ाया ना, नास्तिक बन गए। एक वृंदावन वाला लड़का था, क्या क्या कौन कौन, तो जो पढ़ करके आया ठीक है, नहीं तो पढ़ते 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 जैसे हम लोग हैं मठ में आकर के पढ़ करके, माने पढ़े माने शास्त्र पढ़ करके, और तब हम ऐसा नहीं तो बाबू महाराज जी इसलिए जानते हैं, अनुभवी हैं, तो वो ये 9 वर्ष की उम्र से ही मठ में है। प्रभुपाद उस समय थे, श्रीधर महाराज जी, बाबू महाराज जी, मैंने कहा जैसे श्रीधर महाराज जी तो बहुत पहले के होंगे, मैं आपने कुछ जाने नहीं, आप नहीं जानते, अरे श्रीधर महाराज तो हमारे से पीछे में आए, जूनियर बाबू महाराज बहुत पुराने, वो कागभूषण दी हैं, बहुत पुराने आप। बहुत पुराने आदमी और अनुभवी आदमी, उनकी भाषा भी बड़ी स्टैंडर्ड की है, जब बोलेंगे तब अब कोलोकियल लैंग्वेज, कोलोकियल माने क्या, ग्रामीण भाषा ऐसा बोलेंगे, बांग्ला भाषा वहां पर बंगाल की भाषा ऐसे कहेंगे, मालूम हो जैसे वैसे उधर की। महाप्रभु कहाँ के थे, सिलहटी भाषा, तो ये भी ऐसे ही चिढ़ाते थे सब लोगों को। इसके बाद में उस समय कोई नहीं समझता था कि इतने होनहार और ये हैं। धीरे धीरे मैट्रिक पास किया और उसी समय में प्रभुपाद जी अप्रकट हो गए, यही हो रहा था जे इनको अब हरिनाम दीक्षा देंगे, हम समझते हैं कि गुरु जी से किया, प्रभुपाद जी के बाद में थी, फिर उनको हटा करके फिर जा जाओ महाराज, और फिर गुरु महाराज जी ने, गुरु महाराज जी प्रथम से हैं, इसलिए हम कहते हैं जो जिसका हृदय जिसके द्वारा प्रभावित होकर के और परमार्थ राजित में लगा है, इसलिए गुरु महाराज जी को ही सर्वस्व। गुरु महाराज जी ने उनका हरिनाम भी दिया, दीक्षा का भी दिया, और अंत में संन्यास भी दिया, और उसी को उन्होंने माना। कभी कभी वो आते थे हमारे जाजावर महाराज जी, कुछ कुछ ऐसा कहना चाहते थे किंतु उनको साहस नहीं होता था कुछ कहने का, बोलते ना
ना उन्हें बोलते हमारे दिखा जो बोले किंतु शिष्य उनारी बोले उनारी प्रथम थे कई और उन्हें हृदय थे उनारी
पहले से ही गुरु महाराज जी के पास में थे, इसलिए गुरु महाराज जी का उन्होंने हृदय दे रखा था, इसलिए उन्हें। कुछ लोग अभी भी कुछ ऐसा कहते हैं, हम लोग उस विषय को नहीं मानते। तो इसके बाद में कुछ झगड़ा उगड़ा परस्पर हुआ गौड़िया मठ, प्रभुपाद जी के जाने के बाद में बहुत उथल पुथल हो गया, उस समय बहुत गड़बड़ी हुई, यहाँ तक कि गुरु महाराज जी के नाम से और नरहरि प्रभु, नरसिंह महाराज और इनके सब पास वाले जितने थे निकट वाले, पर 15 आदमियों पर मर्डर केस एक चला दिया झूठ मूठ का, और इनों को जेल में दे दिया गया। और उस समय में बामन महाराज ही एक बाहर में थे जो सब फाइल लेकर के, छोटे बच्चे अभी 16-17 वर्ष के होंगे, और चारों तरफ में दौड़ते रहते थे वकीलों के, और इन लोगों का भोजन बना करके वहां पर दे आते थे। सब लोग इधर उधर हो गए किंतु ये नहीं, और सब वकीलों को भी समझाना, अभी छोटे से बच्चे क्या समझाएंगे, किंतु सब कुछ यही करते थे। गुरुजी इन पर इतना विश्वास करते थे, इनको 103 डिग्री बुखार है ना, कहते संतोष
सज्जन
सज्जन ना ना संतोष ही बोलते थे हमारे समय में, तो संतोष संतोष कहते थे। और जान रहे वो आएंगे, और जितना आदमी भी हो, 50 आदमी हो, 100 आदमी हो, 10 आदमी हो, 5 आदमी हो, रात 12 बजे भी हो, रसोई बनाओ, रसोई भी लग जाए और झट तैयार एकदम। और देखो हमारे यहाँ भी हम लोग हैं लाट साहब के नाते, बोली रोज जैसे तू तरकारिया मान लो खोर, एक तू तरकारिया मान लो खोर दे, यदि मंगल चाव ताले उंगारा आदर्श, यदि लौ ताले मंगल, सब काम करना नीचे से ऊपर तक। कहते थे कि जूता सिलाई से चंडी पाठ तक गुरुजी हमको सब करने के लिए देते थे, और हम लोग थोड़ा सा 5 पैसा भिक्षा कर लेते हैं तो बस, या कोई काम कर दिया तो हम दूसरा काम नहीं करेंगे, तब तो कल्याण कैसे होगा। अपनी योग्यता के अनुसार में सब कुछ करना चाहिए जैसा वो करते थे। हमने देखा है हमारे आने तक भी लोगों को ये पत्ता देना और ये नमक देना और ये सब करते थे, और इधर में एडिटिंग भी कर रहे हैं गौड़िया पत्रिका, उस समय हमारे आने के बाद में चालू हुई, प्रेस भी पूरा देखना कलकत्ते से सब आना जाना, और खड़ाऊ पहन करके, फूल चुनना है तो पेड़ पर चढ़ना होगा तो खड़ाऊ लेकर के चढ़ जाते
थे।
हम लोग बहुत दिनों तक खड़ाऊ पहन करके रहे, और वो तो हमसे भी बड़े अभ्यास, चक्कर चक्कर कलकत्ता जाना आना ये सब। एक बार पैर फिसल गया उसमें ट्राम में, सब लोगों ने, गुरुजी ने और हम सब लोगों ने मना किया, तब फिर से ये चक्कर लिया। हम लोग अंत तक बहुत दिनों तक मथुरा आने से पहले तक, या यहाँ पर भी हम खड़ाऊ ही पहन गए, और कपड़ा कैसा मोटा, खाना भी वैसा, तो 103 बुखार में भी सब समय काम करते। समस्त गुरु महाराज जी का ये सब, हम लोग तब पीछे से आए, मैं आया 1946 के अंत में, और वो 1943 में गौड़िया वेदांत समिति की 42 में स्थापना हुई, और उसके पहले से ही
1930
साल में आए हैं। तो उस समय तो उनका इतना दायित्व का काम नहीं था, पढ़ते थे, किंतु जब गुरु महाराज जी ने पृथक करके गौड़िया वेदांत समिति की स्थापना की, तो इस समय सभी काम उनका, जितना चिट्ठी लिखना, कोई भी काम करना, देखना सुनना, प्रचार में जाना, उनका रसोई बनाना, सब लोगों को ये करना, ये सब काम वही करते थे। हम रहते आज के ना, कहते हम तो नहीं करेंगे, हम तो छोड़ करके भाग जाए। जब मैं गुरु जी के साथ में बावन महाराज जी प्रेस देखने लगे, और मैं जब प्रचार में जाने लगा, तो गुरु जी किसी कहते ये रसोई नहीं बना सकता है सबका, बस हमारे लिए बनाएगा 2 आदमी के लिए, बाकी जिसको है वो करे और हमारा प्रसाद उसमें दे करके और सबको बांटे, नहीं तो हजार हजार आदमियों का उत्सव होता रहता था। किंतु हमारे ऊपर में विचार करके वो जानते थे जैसे इसके द्वारा नहीं हो, इसलिए नहीं करते। अरे हम तो, हमारे तो कितने नौकर लगे रहते थे रसोई बनाने में, और हम अभी कभी जीवन में रसोई बनाए नहीं, तब थोड़े दिनों में सीख करके उनके लिए रसोई बनाता था, उत्सव टूसव में नहीं। तो बम महाराज जी सभी कामों में पटु, प्रबंध लिखना, देखना सुनना, उनकी चिट्ठी, उनका सब काम देखना सुनना सब करते थे। एक बार प्रेस में हाथ चला गया, हाथ उनका कट गया या उंगली कट गई, बस गुरु महाराज जी रोने लगे, उनको लेकर के साथ ही साथ में मेडिकल कॉलेज जा करके, और जब तक अच्छे नहीं हुए तब तक उनको देखना सुनना कठिन हो सकता है। गुरु महाराज जी ऐसे भक्तों को कभी भूल सकते हैं जिन्होंने, भगवान कहते हैं कि जिन्होंने हमारे लिए सर्वस्व त्याग किया, स्त्री पुत्र परिवार भाई बंधु रुपया पैसा, उसको कभी भगवान छोड़ेंगे नहीं छोड़ सकते। बाबा महाराज जी की बहुत सी बातें हमें याद है, एक दो नहीं, यदि भंडार खोलेंगे ना तो कितना निकलेगा। हमारे साथ में बहुत जगहों में गुरु महाराज जी के साथ में प्रचार किया, हमको बासन मजना था, रसोई में बनाता था, किंतु बासन आगे जाकर के मल गई, धोकर के सब ठीक ठाक कर देंगे और गुरु महाराज जी के लिए छायाचित्र आगे से प्रस्तुत कर रखेंगे, सब कहाँ कहाँ क्या होगा ये सब प्रस्तुत करेंगे, कहाँ पर कैसा भाषण होगा उसको लिखते थे और फिर उसी को पत्रिका में देना है, सब काम करते थे नीचे से। जो जो याद आती है मैं वैसे कहता हूँ, सीरियल मत लेना, किंतु जो जो याद आता। एक दिन मैं बैठा था तो देखा जब बच्चों के साथ में बातचीत कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे शिशु और लड़कियाँ और बच्चे दोनों, वो चुचुड़ा के वो जो थे ना ज्ञान बाबू, हाँ उनके लड़के लड़कियाँ या और आसपास के से सब छोटे छोटे बच्चे, सब कोई लड़का कोई लड़की, ऐसे बातचीत कर रहे हैं हिल मिल गए, जैसे दादू एक दादू तो नहीं बने, तखन ब्रह्मचर्य प्रभु प्रभु बोले सब, प्रभु एक तो भूतर गल्प बोलते पड़े भूतर गल्प हाँ हम ही जानी तो, अरे देख ऐसा हुआ कि आप बात ये ठीक कह रहे थे, हमने कहा जैसे ये ठीक है तो हाँ ठीक है। देखो वो बीच बीच में पत्रिका करते करते और काम करते करते हम लोगों के आने के बाद में कभी थक जाते थे तो कभी बिना किसी से कहे हुए ही वो चले जाते थे कृष्ण चंद्रपुर, वहाँ पर हम लोगों की एक पीसी माँ थी, उनके घर पर चले जाती, वो उनको पुत्र की तरफ में मानती थी, अब बहुत उनको मारती थी, तो कभी कभी हो जाता तो चुपचाप वहाँ चले जाते, तो कह रहे थे उन बच्चों से कह रहे हैं देख हम एक बात, मैंने वो तो बंगला होले भालो हो तो हिंदी में तुम लोग नहीं समझोगे, देख हम एक बार मठ से करीब करीब 7 बजे मैं निकला चुचुड़ा से और कलकत्ता जाते जाते 9 बज गया और वहाँ से सियालदह जाते जाते हमको करीब करीब 10 बजे लास्ट गाड़ी मिली और वहाँ से 10-12 स्टेशन के बाद में वो पड़ता है मजिलपुर जयनगर वहाँ पर और वहाँ से 4-5 माइल पैदल वहाँ पर जाना पड़ा गांव में और उस समय घोर जंगल और कोई रिक्शा जाने का भी रास्ता नहीं, अभी बांस भी नहीं कुछ और बांस बगान और फिर दूसरे दूसरे बगीचे, अब बड़ा भयानक रास्ता, तो उसी में उनका जाने का अभ्यास होता तो 11 बज गया और गाड़ी लेट हो गई 11 बज गया वहीं स्टेशन पर और वहाँ से अभी 4 माइल जाना है, तो वहाँ से चला, वहाँ से चल करके जब बीच रास्ते में आया वहाँ देखा जैसे वहाँ पर बत्ती सब जली हुई है, बहुत सी बत्ती जली हुई है, नहीं क्या हो रहा है, बाल महाराज जी कह रहे हैं आ वो सब छेल रहे ना ऐसे सुन रहे हैं कोई ऐसे और भीत भीत मर में डर रहे हैं और कुछ हो रहा है, ये भूतर की एक गल्प हो गई। और ये सब जब हम वहाँ गया देखा जैसे विवाह शादी हो रही है, हमारे पास में 2-4 आदमी आए, अरे इधर हमारे साथ में आओ यहाँ पर शादी हो रही है खा पी करके तब जाना, और रास्ता को घेर लिया। तो हमने कहा भाई ये हम तो जानते नहीं थे, तो ये आदमी जैसे ठीक बोल रहे, तो कहा जी होगी ऐसी कोई बात, तो मैं थोड़ा सा रास्ता से वो जा रहा था, वहाँ से एक मोड़ है और वहीं पर एक आजकल तो वहाँ पर ईंट ये टाली है ना टाली का करना है, तो वहाँ पर टाली करना, वहाँ पर भूत श्मशान था, भूत वहाँ पर जलाते थे श्मशान में आदमियों को, तो वहाँ पर ले गए थोड़ी सी दूर और देखा जी बड़ा चाक चिक ये सब हो रहा है, हमको कुछ लोग घेर करके बैठे, विवाह कराएगा विवाह करा दीजिए आप तो पुरोहित है ना ब्रह्मचारी है, और कुछ ऐसे बोलने लगे जो हमको बड़ा डर लग रहा है, ये तो हमने सुना था जो रास्ते में बड़ा ये गड़बड़ का ये है तो वही तो कहीं नहीं है ये सब वो लोग, और वो हमारे निकट नहीं आ रहे। हमने माला निकाल ली तुलसी वाली और गले में तुलसी की माला थी और मैं हरे कृष्ण कहने लगा थी। अब बच्चे से पूछा तब इसके बाद में क्या हुआ? तो कोई कहता जैसे भोजन करके जाना, कहा जैसे भाई भोजन करना ये परिचित स्थान नहीं और क्या जाने क्या है नहीं है, हमको कोई अनुमान ठीक नहीं हो रहा था ये भूत हो कोई डकैत बदमाश कुछ हो। तो मैं कुछ बोलता नहीं, चुपचाप, और बोलते नहीं थे अधिक, तो वो चुपचाप बैठे हैं और वो सब परस्पर परस्पर बात कुछ कर रहे हैं। मालूम हुआ जी ये बात कर रहे हैं, यदि माला का ना था तो पहले देखता मैं क्या, हमको तो सुन दिया थोड़ा सा, माला नहीं रहती तो ये ना जाने क्या करते। अब हमको कुछ डर मालूम, हमने कहा जैसा अब यहाँ रहना नहीं चाहिए, तो मैं वहाँ से जो बैठाया था वहाँ, किंतु हमसे दूर रहते थे ना, दूर थोड़ा रहते थे, तो हमने कहा जैसे भाई अब हम जाएंगे, ये कह करके मैं उठ करके चला और वो पीछे पीछे चारों तरफ से घेर लिए। मैं भी संसन करते हुए और हरे कृष्ण जोरा जोर से करने लगा तो थोड़ा सा हट गए। इसके बाद में मैं धीरे 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 किसी प्रकार से वहाँ जब आया तो वहाँ से लौट गए वो और कहने लगे आज ये बच गया, अच्छी तरह से बच गया, नहीं तो यदि ये नहीं करता ऐसा बोलता नहीं तो हम छोड़ते नहीं। और क्या घोड़े के गाड़ी पर बैठा करके और पहुंचा दिया उनको, और एक टोकरी में फल भर करके भी उनको दे दिया,
सब ऋतुओं के फल एक साथ,
और उनको देकर और वहां पर पहुंचा दिया। यहां जब आया तो फिर जेहूं उतरा तेहूं गाड़ी कल ने कहां चली गई, और आदमी भी नहीं रहा और फल भी नहीं रहा। अब तो मैं डर गया, इनके घर में आया, कहा जैसे वो कहती है जैसे अरे बाबा तुम्हें ऐतो रात्रि कुथा थे के आसले, तुम्हारा प्राण बेचे गए यही चलते प्राण से बच गया यही बहुत हो गया, नहीं तो आज तुम तो मर जाते वो तो। तो उन्होंने कहा जी हमने ऐसा ऐसा देखा रास्ते में, अरे तो वही तो भूत रहते हैं ऐसा करते हैं और कितने आदमियों को जान से मार डाला, तुम तो बच गया, ये हरिनाम करता था इसीलिए बच गया, नहीं तो तुमको छोड़ने वाले नहीं थे। ऐसे अब वही सब सुनने के लिए रोज आते थे ऐसे। अच्छा एक दिन देखा सब लोग बैठे रहते बच्चे सब प्रचार में कहे संन्यास लेने के बाद, दादू अपनी एक तो हाथ देखते जाने तो हम ही जाने हाँ देखना जानते हैं, तो उसे ऐसे ही कर बातचीत करते हैं जो कुछ कहेगा वो सब। अच्छा उन्होंने कहा जे देखो तुम्हारा चित्त चंचल है और तुम्हारा पेट खराब रहता है, वो मैंने देखने से मालूम हो जाता है ना दुबला पतला आदमी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती, पेट में गड़बड़ी है और तुम्हारा चित्त चंचल नहीं रहता, तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता है, मैंने जिसको देख लेते हैं समझ जाते हैं बस। और वो कहते अरे ये तो सिद्ध आदमी है ये तो जानते हैं सभी, बस ऐसे ऐसे ही बात। और परमार्थिक लोग आते हैं तो बड़े की बात है, जैसा आदमी आएगा उससे वैसे ही बात करने में चतुरना है। अभी बतलाया ना ये हम लोग आसाम में गए और जहां पर तर्क वितर्क हुआ महाप्रभु जी के विचारों की जरूरत हुई, ये महाप्रभु स्वयं भगवान है 39 प्रकार के प्रमाण वहां पर संग्रह करके अपने साथ में रखे, उनको देखने की जरूरत नहीं है, धड़ा धड़ धड़ा धड़ 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 बोलने लगते। ऐसे ही वो शब्दकोश माने
डिक्शनरी
और लोगों को इतना याद, हम लोग तो याद करेंगे भूल जाएगा उनका ये सब। ये वो हमने वहां पर बतलाया राधा रानी कुंज में परिक्रमा हो रही है, गुरु जी लिखवा रहे हैं, अब धारावाहिक रूप में प्रबंध लिखा रहे हैं और वहां पर कितने आदमी हैं, और गुरु जी का भी ऐसा, हम लोग तो 10 बार पुस्तक देखेंगे, उनको पुस्तक देखने की जरूरत नहीं, गुरु महाराज जी डिक्टेशन दे रहे हैं, एक बार फिर रखे गए नहीं, और बमन महाराज जी लिख देंगे, फिर देखने की जरूरत नहीं, बस प्रेस में चला गया, वो बस छप गया, बस कारक्षण प्रूफ रीडर नंबर ही वन। हम लोग का कहीं इधर उधर छूट जाएगा, उनका प्रूफ रीडर ही में पक्का एकदम। तो बिकम महाराज से भी छूट जाएगा, वो भी बड़ा मिनटली देखते हैं, उनका भी नहीं छूटता, किंतु उनसे भी छूट जाएगा, किंतु उनसे नहीं छूटेगा, बहुत मुश्किल। अब आजकल तो ऐसा कोई प्रूफ रीडर संपादक ये सब मैं देखता ही नहीं। जिस समय मैं आया तो हमसे इन लोगों का कोई परिचय नहीं था, हमारा परिचय था मधुसूदन महाराज जी से, उनका नाम था नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी। तो मैंने उनको पत्र दिया, तो उन्होंने गुरु जी को दे दिया, जिसका उत्तर दे दीजिए, तो गुरु जी ने इनको लिखवाया। तभी से हमको तैयारी जी कहते थे, तिवारी जी नहीं, बंगला में होता है तैयारी,
बंगला
तिवारी, हाँ तो वो तैयारी जी कहते थे। तो मैं जिस समय आया, मैं तो इन लोगों को पहचानता नहीं, किंतु चिट्ठी में बहुत बार उन्होंने लिखा गुरु जी के नाम से, बस उनके हैंड राइटिंग में जानता था। जब मठ में मैं गया, सब छोड़ छाड़ करके, सब कुछ छोड़ छाड़ करके गया, 1946 के दिसंबर में मैं गया, तो स्टेशन पर पहुंचा तो देखा जे हरिकेन लिए हुए एक आदमी हमको ढूंढ रहा है। तो हमसे कहते हैं आप तैयारी जी हैं,
बांग्ला बोल रहे हैं, हिंदी की बोल रहे
हैं, वो हिंदी और बांग्ला दोनों मिला करके गाँच थकता है ऐसा। तो हम कहे आप कौन हैं? आ तो मैं आपको चिट्ठी लिखता था गुरु जी के तरफ से, तो आपको कैसे पता चल गया? तो गुरु जी ने कहा जैसे वो आज आएगा, और हमने कोई चिट्ठी नहीं दिया था, ऐसे ही चलाया था। रात में 11 बजे रात में